नियम दिला दीजिए, मतलब ऐसा कि नियम हम लेते हैं और टूट जाता होगा, ऐसा लिखना चाह रहे होंगे, पूरा नहीं लिख पाए। देखना ऐसा क्यों होता है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि पहले भी हो चुका है, मुझे एक नियम दिलवा दीजिए। अब इससे क्या निकाले अर्थ, है ना, कुछ अर्थ। वो बीच में एक सेंटेंस लिखना चाह रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि मैं जब नियम लेता हूं तो टूट जाता है, ऐसा पहले भी हो चुका मुझे, लेकिन आप एक नियम दिलवा दीजिएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए प्रश्न। देखो इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेना चाहिए नियम, जिससे कि उसे हम निभा सकें, जिसके लेने के बाद हमें निर्वाह करने में संक्लेश ना हो। अपनी शक्ति से ज्यादा व्रत ले लेंगे तो निर्वाह नहीं होगा, उल्टा संक्लेश होगा, नियम टूट जाएगा और कॉन्फिडेंस लूज होएगा कि हमसे नहीं होता। और अगर अपनी सामर्थ्य से आधा ले लिया, आचार्य श्री कहते हैं कि दो वर्ष की सामर्थ्य है तो एक कर लेना चाहिए, तीन नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी नहीं कर पाओगे। फिर अपनी शक्ति को पहले विचार के और फिर उसके बाद छोटे छोटे से नियम लेके अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना और फिर उसके बाद बड़ा नियम ले लेना चाहिए, तो फिर आप नहीं थकेंगे। तो आप ले लेना हमसे नियम, एक नियम दिलवा दीजिएगा, आप सोच लो हम दे देंगे, हमारे पास है ही नहीं देने के लिए, हम आशीर्वाद भर देते, नियम हम कहां से लाएंगे देने के लिए। नियम तो आप ही बता दो कि हम ये देना चाह रहे हैं, अपनी बुद्धि में आता नहीं कि कौन सा नियम दे दें, आप जो नियम लेना चाहें उसके लिए आशीर्वाद दे देंगे। समूह शरण में केवली भगवान भी जाते हैं क्या? बहुत सी पुस्तकों में लिखा है कि जाते हैं, तो केवल ज्ञान के बाद उसकी क्या जरूरत है? देखो तीर्थंकर के द्वारा ही धर्म चलता है, सामान्य केवली के द्वारा धर्म नहीं चलता, तीर्थंकर केवली से ही सारा शासन सारा धर्म का काम चलता है, इसलिए उनकी मोनोपाली है। हाँ, तीर्थंकर का समोषण लगा है तो हजारों की संख्या में केवल ज्ञानी वहां बैठे रहेंगे, वो उनकी शोभा है। हाँ, सभी रिद्धिधारी गणधर स्वयं जो है प्रेषण रिद्धि के धारण करने वाले, एकमात्र केवल ज्ञान शेष है, ऐसे महान महान आत्मा उनके चरणों में वहां बैठे, जबकि सब एक बराबर है। और जो केवली है देवी उत्तय केवल ज्ञान के धारी है, जितने तीर्थंकर केवली है समोह चरण में उनको भी उत्तय केवल ज्ञान है, कोई कमी नहीं है, लेकिन चलेगी किसकी? चलेगी तीर्थंकर की। हाँ, उस समय केवली भगवान चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई उनके पास जाएगा ही नहीं कि केवली भगवान आ रहे हैं, तो सब तीर्थंकर के पास जाएंगे। ये उनका प्रभाव है विशेष, ये वैशिष्ट्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व जीवन में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाई थी, अपना कल्याण तो किया ही, अपने द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण है, ये उनकी विशेषता है, जिससे कि समूह शरण में बैठ के सबको वे धर्मोपदेश देते हैं और अन्य केवली भी उनके निकट बैठे रहते हैं। आप प्रवचन देते हैं तो फिर आपको जो है वो बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, तो आंसू आ जाते हैं, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, मेरे ठीक है, मेरे मन में भी आता। देखो रोना दो प्रकार का, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेम नान्यात् परोभय स्थानान् असत् वेद्यस्य, अपने भोग विलास की सामग्री छिन जाने पर या कि शरीर में कोई व्याधि हो जाने पर या कि मन में कोई बात का संक्लेश होने पर जो हम दुख और महसूस करते हैं और रुदन करते हैं, आंसुओं से आंसू आ जाते हैं, वो सब असहता वेदनी और पाप के बंध का कारण है। लेकिन दूसरे के दुख को देख कर या सुन करके या विचार करने मात्र से दूसरे के दुख को सहन नहीं कर पाते और आंसू आ जाते हैं, या कि हमारे पास आज कितनी थोड़ी सी क्षमता है, आज कोई तीर्थंकर का सानिध्य नहीं है और मैं कितना अल्पज्ञ हूं, इस तरह के विचार करने से जो आंसू आते हैं उनमें तो पुण्य का ही बंध होता है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि अगर ऐसी स्थिति बनती, बहुत दुर्लभ है ऐसा होना, है कि नहीं, अपन को अपनी सुख सुविधा की सामग्री छीनने पर तो खूब रोना आता है, कभी इस बात अपनी बिटिया को भेजने के बाद रात 12 बजे आंख खुल जाती तो दो आंसू गिर जाते, कभी रात 12 बजे आंख खुलने पर इस बात के लिए आंसू गिरे कि आज कोई तीर्थंकर नहीं है, आज मुझे धर्म का सच्चा उपदेश देने के लिए कोई नहीं है, आज मैं साक्षात भगवान के दर्शन नहीं कर सकता हूं, कितनी कमी महसूस कर रहा हूं, इसमें कभी रोए? मेरा धर्म ध्यान छिन गया, इसके लिए कभी रोए? आज मंदिर नहीं जा पाए, इस बात का मुझे रोना आ रहा है? नहीं, आते ही नहीं। आज भोजन ठीक से नहीं मिला, इस बात का रोना तो सबको आता है, हमारे मन की चीज नहीं मिली भैया। इसलिए दोनों में बहुत फर्क है, वीपिंग की क्वालिटीज अलग अलग हैं, जैसे परिणाम है। अगर विशुद्धि है अंतरंग में तब भी आंसू आ सकते हैं, लेकिन संक्लेश पूर्वक अगर आंसू आते हैं तो वो पाप का बंध का कारण है और परिणाम और निर्मल हो जाते हैं। हैं संत हृदय नवनीत समाना, ऐसा लिखा तुलसीदास जी ने कि जो जितना अधिक संवेदनशील होगा उसकी विशुद्धि उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएगी, और विशुद्धि बढ़ने पर कैसे हो जाता नवनीत के समान, कठोर भी है और मुलायम भी, मुलायम इतना कि दूसरे के संताप से पिघल जाता है और कठोर इतना कि तलवार से भी काटो तो कटता नहीं। हाँ, नवनीत देख लो, चलाओ तलवार, देखें उसको दो पीस कर दो, उसके कर ही नहीं पाएंगे दो पीस, इतना तो कठोर है। और नरम कितना है कि दूसरे के संताप से क्षण भर में पिघल जाता है। तो ये ऐसी ऐसा विशेषण दिया हुआ है, वैसा बनना तो बहुत कठिन है। महाराज, हमें दही खाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि एक चीज, एक प्रश्न फिर और, हमें घास पर क्यों नहीं चलना चाहिए? दही अपन को मर्यादा का खाना चाहिए, दही से जमाया हुआ, जो डायरेक्ट दही बनाते हैं अपन दही डाल करके, वो दही अपने यहां पर खाने योग्य नहीं माना, क्योंकि उसमें मर्यादा ज्यादा हो गई। जो अपन किसी और सिक्का वगैरह या कि नारियल की गिरी उसके ऊपर का छिलका उसको दही में डाल के सुखा करके धो पहुंच के रख लेते हैं, उससे जो जमाते हैं वो मर्यादा का दही माना जाता, और जो डायरेक्ट दही डाल करके दूध में जमाया जाता उसमें मर्यादा से ज्यादा होने से अपन उसको नहीं खाते हैं। 24 घंटे की मर्यादा है, उतने के बीच बीच में दही खाने योग्य है। मुनि महाराज भी दही और छाछ लेते हैं, हमें घास पर क्यों नहीं चलना चाहिए? भैया, वो जो घास इतनी इतनी सी दिख रही है तो वो कितने जीव हैं उसमें? उस घास में अनंत जीव राशि, थोड़ी मोड़ी नहीं है, उस घास के आश्रित भी है, और उस वो जो घास है वो अपने आप में प्रत्येक जीव का शरीर है, और कितने जीव हैं, असंख्यात जीव उसमें है, और उसके आश्रित जो निगोदिया जीव है भी अनंत अनंत है। आपने तो झट से पैर रख दिया और वो कुचल गई घास। हमने एक घटना नहीं सुनाई थी, किसी कवि ने कल्पना करी है कि जब भगवान महावीर स्वामी अपनी माँ के साथ एक लॉन में, पार्क में और जा रहे थे, तो वो वहीं गेट पर रुक गए, माँ भीतर चली गई, 3-4 कदम भीतर गई थी, उतने में देखा कि कहाँ चला गया वर्धमान, तो पीछे देखा तो वो तो बालक भगवान बाहर ही खड़े। अरे आओ ना बेटे। नहीं माँ, तुम जब नन्नी नन्नी धूप को कुचलती हुई चलती हो तो मुझे बहुत दुख होता। अरे, बाहर आकर के देखा तो उनके आंसू आ रहे थे। क्या हो गया, किसी ने कुछ कह दिया? नहीं, तुमने उन जीवों को क्षति पहुंचाई, इससे मुझे दुख है। माँ, मेरी तो पूरी पीठ छिल गई। और माँ ने जब उनके कपड़े उघाड़ करके पीठ पर देखा तो जितने पैर उन्होंने धूप पर रखे थे उतने ही 3-4 पैर उनकी पीठ पर बने थे। ये एक प्रतीक है, ऐसा हुआ था ऐसा नहीं मान लेना, लेकिन ये प्रतीक है कि इतनी संवेदनशीलता है जिसके भीतर वो काय को रखेगा, रख ही नहीं सकता। जिसके भीतर ये लगता है कि जीव मर जाएंगे, अरे कोई अपने ऊपर पैर रखे तो कैसा लगेगा, वो भी उनमें भी तो जीवन है तो उनके ऊपर पैर क्यों रखे। एक व्यक्ति कह रहे थे हमसे कि आजकल तो रात में, दिन में भी नहीं, रात में बिछाई भी उसी पर हो जाती और सारा फंक्शन उसी पर होता है। प्रवचन तो छोड़ो, प्रवचन भी जो है लान में और बड़े, हमने तो उधर देखा महावीर जी वगैरह में, वहां पर जो है फर्श से उन्होंने बिछा दी बिछाई और मंच बन गया और उसी में। हाँ, तो ये जो है ये ठीक नहीं। शादी ब्याह में भी उसके ऊपर ही सारा कुछ, खाना पीना सब उसी में करते हैं। अपने सुख के लिए दूसरे को दुख में डालना, अपने लिए दुख का उपाय करना है। अभी नहीं मिलेगा, बाद को मिलेगा उसका फल, ऐसा तो है नहीं। भक्तांबर कैसे याद करें संस्कृत में, पहले पढ़ना सीख लो, फिर बाद में हम बता देंगे। ठीक ठीक पढ़ना और एक महीने तक रोज पाठ करने का नियम ले लो, याद हो जाएगा। चार चार एक श्लोक रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करना, सबसे अच्छा उपाय है। हाँ, नहीं तो चार श्लोक लेके बैठ गए याद करते हैं, रट रहे हैं उसको। रटना बोलते रिपीटिशन, बार 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 घोकना। उससे बढ़िया है कि एक महीने तक रोज पाठ करेंगे शुद्ध, तो आपको एक महीने के बाद आसानी से याद हो जाएगा। मुझे सकल गे की बिनती याद नहीं होती थी। हाँ, अच्छी लगती थी, लेकिन फिर हमने तय किया कि अपन तो पाठ करेंगे। आचार्य महाराज ने कहा कि आमनाय नाम का स्वाध्याय करो, रोज पढ़ने का नियम ले लो, अपने आप कंठस्थ हो जाए। और वाकई में जो है, और दो महीने लगे रोज, जहां इसमें कहां भोपाल में 97 में रोज सुबह से पाठ करने का नियम ले लिया। 5 मिनट लगते सकल गे की विनती, और बस वो कंठ में अपने आप स्मरण में, और रोज दोहराते रहना चाहिए, नहीं तो भूल जाएंगे फिर। हाँ, पाठ अगर करना है तो रोज पाठ करना, याद हो जाने के बाद भी बीच बीच में बार बार रिवाइज करते रहना, तो याद बना रहेगा। इस तरह कर सकते हैं। महाराज, हमारे घर में माता पिता वर्षों से शास्त्र पढ़ते हैं, मुझे भी आपके और उनके जैसे बनना है, तो मैं क्या करूं? मुझे एक ऐसा नियम दे दिएगा कि बहुत समय तक ले सकूं। यही नियम ले लो। अगर देखो, माता पिता अगर शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं और उनके परिणाम बहुत अच्छे हैं, तुम्हें अच्छा लगता है, तो तुम भी वही नियम लो कि हम रोज कोई ना कोई धर्म की चीज 4 लाइन पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे। और देखो, दुनिया भर का कितना पढ़ते हैं अपन, स्कूल का पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो उसी में 5 मिनट हम बैठेंगे 9 बार नमोकार पढ़ के, और फिर मेरी भावना पढ़ेंगे, 12 भावना पढ़ेंगे, और क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी और भी विनती है, स्तुति है, दर्शन पाठ है, ये सब पढ़ेंगे, तो उससे अपना धीरे धीरे ज्ञान भी बढ़ेगा और निर्मलता भी आएगी। आपके और उनके जैसा बनना चाह रहा हूं। पहले उनके जैसे बन जाओ तो फिर हमारे जैसे बनने में कोई देर नहीं लगेगी, है कि नहीं? सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, एकदम हमारे जैसे बनोगे तो फिर उनके जैसे नहीं बन पाओगे बाद में, इसलिए पहले उनके जैसे बन जाओ, क्योंकि वो इतना स्वाध्याय करते हैं। मुनि महाराज के लिए लिखा है, दीक्षा लेने से पहले जिनको आगम का अभ्यास हो, संसार से उदासीनता हो और परिचय सहन करने की सामर्थ्य हो, तो दीक्षा ले लेते हैं। तो अपन वो तैयारी करो, आगम का अभ्यास करो और फिर संसार की वास्तविकता को समझो, उससे उदासीन हो और सहन शक्ति बढ़ाओ, बढ़ती चली जाएगी, तब फिर जो है मुनि महाराज बन जाना। भावना बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन थोड़ा सा अभी और पढ़ लो, फिर हम एक और, अच्छा फिर उसके बाद भी कोई और बनना चाहे तो उसके लिए एक और करना पड़ेगा, तो फिर पूरे यहीं पर रहने का तय कर ले क्या? तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। और लोग जो है सब घबरा जाएंगे कि ये तो इनको यहां मन लग गया, मेरा मन पढ़ाई में कैसे लगाऊं? अब बताओ, पढ़ने बैठा करे रोज, मैं भी मन लगता है। मैंने एक बार और कहा था कि जिन बच्चों का पढ़ने मन नहीं लगता उनको तो और पढ़ना चाहिए, जिस विषय में हम कच्चे हैं उस विषय को तो और पढ़ना चाहिए। अपन कोई अकलंक स्वामी तो है नहीं कि एक बार पढ़ा नहीं और याद हो गया, ना अपन निकलंक स्वामी है कि 2 बार पढ़ा और याद हो गया। अपने को तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं मन लगे तब भी पढ़ेंगे। हम तो कहते किताबों के बीच बैठे रहो, हाँ ऐसे रख करके, हमारी हम प्रशंसा की दृष्टि से नहीं कह रहे, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे कि उसका भी असर होता है। ऐसा नहीं समझना कि नहीं होता अपने को, जब क्योंकि पहले टेलीविजन भी नहीं हुआ करता था, घूमने घामने की कोई इच्छा ही नहीं होती थी कि जाएं और सिटी में सुबह से शाम को घूमने घामने जाएं, नहीं, खाली वापिस लौटे घर में तो अब क्या करें, मन तो कुछ नहीं लग रहा, तो मैगजीन भी नहीं पढ़ने का शौक नहीं था, ना रेडियो, रेडियो तो मेरे से लगाते ही नहीं बना अभी तक, मुझे नहीं मालूम विविध भारती कहाँ लगती और फलाना कहाँ रखता, सीलोन कहाँ लगता, और नहीं लगा ही नहीं, कोई ने लगा दिया तो सुन लिया, और क्या करना अपने को ज्यादा। अब ऐसी स्थिति में मैं हमेशा किताब रखी रहती थी, मैं बैठे रहता, नहीं भी पढ़ रहे तब भी अपनी किताबों के पास बैठे हैं, उस पर धूल जम गई तो उसको साफ करो, उस किताब का कवर थोड़ा ठीक नहीं लगा उसको चेंज करो, आधे पौन घंटे इसी में, फिर उसके बाद एक आध किताब में मन लग ही जाएगा। हमसे हमारी दादी अपनी अलमारी साफ करवाया करती थी, मुझे हमेशा याद आ जाता। ज्ञान ऐसे भी आ जाता है, सेवा करने से भी आता है ज्ञान, ऐसा नहीं समझना। ज्ञान का पहला चरण अभ्यास से आता है, दूसरा गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, तीसरा गुरुजनों के प्रति उनकी सेवा, और चौथा विद्या कालेन पच्यते, समय से आती है, बहुत अनुभव होने पर आती है। पर तीन चरण में से एक चरण भर है अभ्यास करने से, बाकी दो चरण तो गुरु की श्रद्धा और गुरु की कृपा और इनके प्रति सेवा का भाव, इससे ही आती है। वो उदाहरण सुनाऊ कि हमको उसमें 5 पैसे बहुत होते थे, 5 या 10 पैसे बहुत हो गए, तो वो दादी हफ्ते में एक आध बार, कौन हमारी अलमारी, उनकी शास्त्र की अलमारी थी, हाँ तो कौन हमारी अलमारी साफ करेगा, हम करेंगे, हाँ करो 10 पैसे देंगे, अरे ठीक है और क्या करना अपने को, हम कर देंगे पूरी। तो बस जल्दी से सब किताबें जमा जमू करके साफ सुथरा करके जमा दी। अब क्या होता था कि वो कोई ना कोई किताब लाती थी, पहले वो गुटका चलते थे ऐसी छोटी सी, और उसको ऐसे पढ़ते थे ना ऐसे करके, अब तो ये ऐसी बनने लगी, ऐसे पढ़ते थे, अच्छी लगती थी छोटी छोटी सी किताब। तो फिर अपन ने किताब की अलमारी जमाई, 10 पैसे भी लिए, और फिर धीरे से कोई किताब पसंद आ गई, दादी हम ये ले लें, हाँ ले लो ले लो। वो चाहती ये थी कि एकाध तो धर्म की किताब कोई अच्छी इसको लग जाए, सो ले जाके अपने बस्ते में रखेगा, अपनी टेबल पे रखेगा, कभी तो बुद्धि में आएगा, पलटेगा पलटेगा तो याद हो जाए, बस ये प्रक्रिया। और हमको प्रभु पतित पावन में अपावन याद ही नहीं है, किसने सिखाई याद ही नहीं है, पर वो हमें याद आता है अब कि एक धर्म ध्यान की पुस्तक होती थी, छोटा सा गुटका जिसमें बहुत सारे पाठ करने के लिए रहते थे पुरानी, उसमें से पढ़ी थी, और मंगत राय की 12 भावना तो हमें फोकट में याद हुई थी। हाँ जब हम आचार्य श्री के पास आए तो आचार्य श्री ने पहले दूसरे दिन पाठ किया मंगत राय की, तो हमने भी साथ में किया, तो और महाराज जी कहने लगे कि आप तो इन सीधे कॉलेज से आए थे और ये कहां से आपने याद कर ली। हमने कहा हमको भी नहीं समझ में आ रहा, फिर ध्यान आया, बहुत रिकॉल किया तब ध्यान आया कि अरे सवेरे सवेरे जब हम बिस्तर पे पड़े रहते थे इस इंतजार में कि माँ कहेगी कि बन गई चाय, उठो तो उठ जाएंगे, उसके पहले जब माँ झाड़ू लगाती थी घर में तब यही तो पढ़ती थी, कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सा, वो चीज जो है अनकॉन्सियस में बैठती चली गई पूरी, कैसे सुनते रहते थे पड़े पड़े सुनते रहे, और रोज रोज सुनने का ये संस्कार कि जब पढ़ने बैठी तो ऐसा लग रहा कि ये तो अपने को पहले से ही मालूम। ऐसे भी ज्ञान आता भैया, कांटेक्ट में रहने से, किताबों को की इज्जत करने से, सम्मान करने से, दूसरे के ज्ञान की प्रशंसा करने से ज्ञान बढ़ जाता। हाँ ये सब उपाय हैं, इसलिए जिन बच्चों को इस तरह की स्थिति है उनको जरूर से ऐसा प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। 6:07 हो गए और इतने सारे क्वेश्चन छोटे छोटे बच्चों ने खूब लिखे हुए हैं, राइटिंग सही लग रहा है, अब क्या करें, नहीं करें कि करें, ये तो बड़ा अजीब सा प्रश्न है, ये तो छोटे छोटे के प्रश्न, 1 मिनट में निपटाता हूँ, ये बाकी बच जाएंगे। ये पूछ रहे हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है, इसलिए जो भी बहने लोग हैं, माँ लोग हैं, वो जिनका विवाह हो गया है उनको अपने घर में जो जिनसे विवाह हुआ उन जीवन साथी की आरती करने का कहीं कोई विधान आता है क्या, ऐसा बताइए। हाँ ऐसा कहीं किसी ने सुना होगा, पर मैं भी ये पहली बार सुन रहा हूँ। ये तो लिखा हुआ है कि परस्पर एक दूसरे से आत्मीयता और एक दूसरे की विनय, इतना तो लिखा है कि परिवारजनों में जो छोटे हैं वे अपने से बड़ों की विनय करें, सुबह से उनको प्रणाम करें, जय जिनेन्द्र करके और दिन शुरू करें। लेकिन आरती का तो इतना ही है कि जब कहीं किसी विशेष कार्य के लिए, विशेष अनुष्ठान के लिए जा रहे हों तब आरती उतारना। पहले जो है जब युद्ध के लिए जाया करते थे तब जो है जीवन साथी की आरती उतारने का, या कि जब पुत्र विद्या अध्ययन के लिए जाता था और विद्या अध्ययन से लौट के आता था तब पुत्र की भी आरती माँ उतारा करती थी, बहन उतारा करती थी भाई की। तो ऐसा तो आता है पर और विशेष मुझे इसके बारे में कहीं देखने में नहीं मिला। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कहीं कोई विधान रोज का है क्या कि ऐसा आता है। विनय के प्रति तो आता है पर आरती का नहीं आया। आरती भी अगर उस अर्थ में ले लें, आसमंतात रति इति आरती, देखा तो यही है कि उनके गुणों के प्रति अनुराग होना वास्तव में आरती तो यही है। बाकी तो फिर अपन वो दीपक लेकर के करते हैं, वो तो बहुत बाद की चीज। हमने एक बार बताया था ना, एक पंडित जी आए थे, वो मुझे बता के गए कि बोले सही है महाराज, भगवान के पूरे उससे शरीर से भी अपन का अनुराग है और उनके गुणों से भी, तो पहले क्या करते हैं उनके मुख की तरफ ऐसे घुमाते हैं तो उनकी मुख मुद्रा दिखाई पड़ती, फिर उसके बाद दूसरी ऐसे करते हैं तो उनके नाभि तक प्रकाश हो जाता, और फिर तीसरे करते हैं तो चरण तक। इस तरह से जो है ऐसे आरती करते हैं तो पूरे पूरे शरीर और उनके समस्त गुणों के प्रति हमारा अनुराग है ये व्यक्त कर रहे हैं, इसके लिए आरती की जाती। तो गुणानुराग तो अच्छी चीज है, लेकिन इसके बारे में कहीं मिलेगा तब मैं आपको बता पाऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और इसमें देर लगेगी इसलिए इसको छोड़ रहा हूं। नमोकार मंत्र में ये मैंने कई बार बताया कि अरिहंतानम, अरहंतानम, अरुहंतानम तीनों पाठ सही हैं। धवला जी की पहली पुस्तक में इन तीनों की व्याख्या भी की है। अरिहंत वो कहलाते हैं जिन्होंने अपने चार घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया, और अरहंत तीनों लोक में जो पूज्य हैं वे अरहंत हैं। बात एक ही है, सिनोनिम्स हैं ये, और अरुहंत अर्थात जिनका अब जन्म मरण नहीं होगा। कितनी तीनों विशेषताएं हैं, चार घातीय कर्म नष्ट कर दिए हैं, तीनों लोक में पूज्य हैं और जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं। इन तीनों के लिए तीन शब्द अलग अलग हैं, अरिहंतानम, अरहंतानम, अरुहंतानम, ये तीनों ठीक हैं। और नमो कारो और नमो यारो, इसमें से प्राचीन नमो यारो है और परमम हवाई मंगलम और परमम होई मंगलम में से परमम होई मंगलम प्राचीन पाठ है, बाकी जो है हवाई मंगलम ये बाद को प्राकृत की दृष्टि से लिख दिया गया। ये हो गया। मुनि महाराज के मूल गुण किसे कहते हैं, जो नियम से उनको पालन करना है वो मूल गुण कहलाते हैं, माने मेन सब्जेक्ट, और ऑप्शनल माने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कि भाई ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, और बाकी ऑप्शनल हैं, चॉइस है आपको कि इसमें से ये करना चाहें तो 12 तप हैं, 10 धर्म हैं, 22 परिचय हैं, ये सब उत्तर गुण कहलाते हैं, और बाकी 5 महाव्रत हैं, 5 समिति हैं, 5 इंद्री विजय हैं, 6 आवश्यक हैं, 7 शेष गुण हैं, वो सब 28 मूल गुण मुनि महाराज के कहलाते हैं। इतनी चर्चा, समय जो है वो हो गया। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। भावना
इस जीवन में औरों का उपकार करूं।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।